क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
ओम शांति। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। खड़ा हुआ है अटल हिमालय, दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता। बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक, सरिता का जल कण बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को ढहना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। अपनी रक्षा आप करे जो देता उसका साथ विधाता। अन्यों पर अवलंबित है जो, पग पग पर वह ठोकर खाता। जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। हम में चपला सी चंचलता, हम में मेघों का गर्जन है, हम में पूर्ण चंद्रमा चुंबी सिंधु तरंगों का नर्तन है। सागर से गंभीर बने हम पवन समान मचलना सीखे। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखे। उठे उठे अब अंधकार में जीवन पथ आलोकित कर ले। निविद निशा के गहन तिमिर को मिटा आज जगज्योतीत कर दे। तिल तिल कर अस्तित्व मिटा दे, दीप शिखा सम जलना सीखे। अब कांटों पर चलना सीखे, अब तक सुमनों पर चलते थे। तो यज्ञ इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय, ब्रह्मा का महाप्रयाण। तो कल हमने देखा 69 से 80 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना टू विमेन लीडरशिप, दूसरी घटना नया रथ, तीसरी घटना बाप और दादा दोनों कंबाइंड। चौथी घटना म्यूजियम। पांचवी घटना भारत में सेवाओं का विस्तार। छठवीं घटना विदेश में सेवाओं का विस्तार। 1976 विनाश की एक तारीख। और लास्ट और एक बात थी, एक स्प्लिंटर ग्रुप। वैसे ये सेकंड था, पहला एक ग्रुप बना था जो निकल गया था, प्यू। शुरुआत वहां से, ये सेकंड स्प्लिंटर ग्रुप। तो आज हम देखेंगे, कल हमने देखा था फर्स्ट अप्रैल 66 की वोनी साकार मुरली में लास्ट पेज पर बाबा ने किसको नियुक्त किया, दादी कुमार का मुख्य प्रशासिका, और अतिरिक्त प्रशासिका दादी दीदी मनमोहिनी। तो ये दोनों के लीडरशिप में यज्ञ का ये कारवा आगे बढ़ा। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब 125 सेंटर थे, और दादी ने जब शरीर छोड़ा तब 8500 सेंटर्स थे। इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ एक्सपांशन, 2007 तक, 70 से लेकर। तो आज हम दादी प्रकाशमणि का जो प्रशासन था, जो प्रबंधन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके विषय में कुछ बातें देखेंगे। और साथ साथ अगर समय रहा तो रथ, दूसरा रथ, और समय रहा तो तीसरा रथ। और एक बात, आज का दूसरा दिन बड़ी भट्टी में छोटी भट्टी, भट्टा में भट्टी, और 7 दिन तक 80s के आसपास हम घूमेंगे, 69 से लेके तो 80s। तो आज हम डिस्कस करते हैं कुमार का दादी का प्रशासन प्रबंधन कैसा था। तो 69 जनवरी, और कल हमने देखा मई 69 में क्या हुआ, कुमारी भट्टी, फर्स्ट भट्टी, ये रखने का उद्देश्य कुमारियों की ट्रेनिंग, और उसमें से जो निकले वो बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बने उस भट्टी से निकलने वाली कन्या। तो सबसे पहली बात, अभी नहीं, शुरुआत से ही 36-37 में ही जब बाबा कश्मीर गए थे तो 5 चिड़ियों को निमित्त बनाया था, पंच कन्याएं, उसमें से दादी प्रकाशमणि एक थी। और बाकी दादियां कहती है कि तभी से दादी को क्या नाम दिया गया था, लगभग तब से ही मुन्नी मम्मा, मुन्नी मम्मा अर्थात छोटी मम्मा। तो दादी को क्या कहा जाता है, मुन्नी मम्मा, छोटी मम्मा। क्यों? क्योंकि तभी से दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, या तभी से वो छोटी कन्या, पर उसमें माँ के संस्कार बहुत थे। लच्छू दादी, गुदरा दादी, जो बाकी दादियाँ थी, इनकी पालना तभी से दादी करती थी क्योंकि ये छोटी थी। गुलदा दादी 8 वर्ष की थी तब, तो पालना का ये पार्ट तभी से चालू हो गया था, सबकी देखभाल करना। यहाँ तक कि मधुबन में जब आए तो बाबा प्रकाशमणि दादी और को कहते थे रात में जाओ के देख के आओ सब लोग आराम से सो रहे कि नहीं सो रहे, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो पालना का पार्ट बहुत पुराना है, तभी से ही मुन्नी मम्मा, क्या नाम दिया, मुन्नी मम्मा, सबकी तभी से देखभाल करना। ओम निवास में जब थे तब, गुलजार दादी सुनाती है कि जब हम ओम निवास स्कूल में थे तब हमारी किस तरह से पालना होती थी। कुछ माताएं थी वो हमारा ध्यान रखती थी, उनको नियुक्त किया गया था मच्छरदानी, और वो देखती थी मच्छरदानी में टॉर्च घुमा के कोई मच्छर तो नहीं है, मच्छरदानी लगा दी थी, फिर जाती थी, इतनी हमारी पालना होती थी, स्नान कराती थी, सब कुछ कराते थे उनको। तो दादी का पार्ट शुरुआत से ही कौन सा रहा, एडमिनिस्ट्रेटर, एक पालक, एक पालनहार का। तो वो संस्कार तभी से थे दादी में। दूसरी बात दादी के बारे में, प्यूरिटी, कभी कोई वर्णन ही नहीं है कि दादी किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुई, किसी वस्तु की तरफ आकर्षण हुआ। और प्यूरिटी वो बीज है प्यूरिटी सीड है सभी वर्च्यूज का, जिसमें प्यूरिटी रहती है उसमें बाकी सभी गुण अपने आप आने लगते हैं। दादी में प्यूरिटी के संस्कार बहुत ज़्यादा थे और इसके आधार से दादी का जो प्रशासन था, जो बुद्धि थी, वो बहुत तीव्र, बहुत तेज, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेना, भाप लेना, हाइटेंड सेंसेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सिक्स्थ सेंस, समझ लेना चीज़ों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये किस आधार से है, प्यूरिटी के आधार से। और दादी की जितनी क्लासेस है, उन क्लासेस को सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे एक निरागस बालक, एक अविरल धारा बह रही है प्यूरिटी की, निश्चल। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर संसार में भी बहुत है, परंतु इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कम, ऐसा लीडर। तीसरी बात, जो मुख्य दो काम दादी के प्रशासन काल में हुए, सबसे पहला ओम शांति भवन का निर्माण, जहां हम अभी बैठे हैं, ये थोड़ा आगे हुआ 83, परंतु दादी का ही विजन था एक, कि ऐसा एक स्थान हो, ऐसी एक जगह हो जो बिना पिलर्स की हो, जहां स्टेज पर क्या हो रहा है वो पीछे वाला भी देख सके। उस समय 83 में ऐसा बनाना मुश्किल था, परंतु फिर भी ये विजन था एक। लीडर्स जो होते हैं, विजनरीज होते हैं, वो विजन देखते हैं और फिर अपने आप वो साकार होते हैं धीरे 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 धीरे। और ये भी दिखाया गया है कि रात में इतने पत्थर, कंकड़, ये सब पहाड़ी टीला था जैसे, तो दादी खुद रात में वो छोटे छोटे पत्थर उठाने का, फेंकने का काम करती थी, तगारी भी उठाती थी। वो एक बहुत अच्छा चित्र है ओम शांति भवन के कंस्ट्रक्शन का, कि जिसमें सब लोग ह्यूमन चेन, एक तगारी दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, ह्यूमन चेन। बाबा ने कहा पत्थर नहीं हीरे, और कहा जाता है कि ओम शांति भवन के एक एक ईंट में दादी प्रकाशमणि की शुभाशाएं भरी हुई, ओम शांति भवन के एवरी ब्रिक ऑफ ओम शांति भवन कैरीज द गुड विशेस ऑफ दादी कुमार का। क्योंकि और दादी ने ये जब बन इसका जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक एक चीज का दादी को पता था, इलेक्ट्रिकल का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी बातें हैं उस सब में डीप इंटरेस्ट, हर चीज में इंटरेस्ट। तो दादी के शासनकाल में ही ओम शांति भवन बना, और ये दादी का ड्रीम था जैसे। और दूसरी एक बात, यूनिवर्सल पीस हॉल में ही यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहली पीस कॉन्फ्रेंस 283 में रॉबर्ट मुलर यहाँ आया था, और उस समय इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पत्रकार आए थे, केवल जर्नलिस्ट नहीं, एडिटर्स आए थे और चीफ एडिटर्स आए थे, न्यूज़पेपर जो पब्लिश करने वाले लोग हैं वो आए थे। दादी से एक प्रश्न पूछा गया था कि आपने इतने सारे लोगों को यहाँ लाने का कैसे मैनेज किया, क्योंकि अदरवाइज कॉन्फ्रेंस में केवल जर्नलिस्ट आते हैं बस, पर यहाँ तो मीडिया से संबंधित उस समय 83 में इतने सारे लोग आए, आपने इन सबको यहाँ कैसे बुलाए। दादी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये उनके बाप का घर है, वो अपने बाप के घर आए हैं, उनको उनके बाप ने बुलाया है। और एक 1983 में सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पर, वहाँ पर यूएन की जो डायरेक्टर शेली वो आई थी, हाँ, तो उसने भी एक दादी से प्रश्न पूछा था कि दादी इस कॉन्फ्रेंस में 3000 लोग आए हुए हैं और 1000 तो VVIPs है, तो डोंट यू गेट स्ट्रेस्ड। दादी को क्या प्रश्न पूछा था कि आपको स्ट्रेस नहीं होता है क्या, एक VIP को मैनेज करना कितना मुश्किल काम है, दिन रात उसके पीछे पड़े रहना पड़ता है, उसको चाय कब चाहिए, ये कब चाहिए, उसको घुमाना है, उसको लेके जाओ हर प्रोग्राम में, लेके जाओ वापस पहुंचा दो। 1000 VIP थे, 3000 लोग आए थे ऑल ओवर वर्ल्ड से और उसमें 1000 VIP थे। तो दादी के पूछा गया कि दादी आपको स्ट्रेस नहीं आता है क्या, दादी ने कहा मैंने नहीं बुलाया उनको उनको उनके बाप ने बुलाया है, ये उनके पिता का घर है, इसलिए मैं क्यों स्ट्रेस लूँ, मुझे किस बात का स्ट्रेस, उनको बुलाने वाली मैं हुई नहीं हेड में अपने आप को समझती नहीं, हेड समझना मतलब हेडेक, हेड समझना मतलब हेडेक, हेट समझना मतलब दूसरों को कंट्रोल करना, तुम ये करो तुम वो करो, ये तुमने मुझे पूछे बिना कैसे किया? ये क्या है? संघर्ष की अवस्था है। एक एक चीज मुझसे पूछ के बिना करनी नहीं है। कुछ कुछ बॉसेस होते हैं ना, ऐसे होते हैं टफ बॉसेस, टेंशन में रहते हैं निरंतर पूछो तो इरिटेट होते हैं, नहीं पूछो तो मुझे पूछ के बिना क्यों किया, दोनों तरफ से। तो दादी को पूछा, स्ट्रेस नहीं होता? और एक बार दादी से पूछा था कॉन्फ्रेंस में ही कि दादी ये आपने इतने सारे फॉलोअर्स बना के रखे हैं आपने। दादी ने कहा, फॉलोअर्स? ये मेरे भाई बहन है, ये फॉलोअर्स नहीं है, और ये जो है जैसे मैं हूं वैसे ये लोग हैं, और ये मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ये लोग लीडर्स है। ये कौन है? फॉलोअर्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल लीडर्स है, ये अवतरित हुए हैं संसार में दुनिया को बदलने के लिए। तो दादी के पास वो युक्ति भी थी जैसे कैसे किस प्रश्न का उत्तर देना है। नहीं तो ऐसा अगर पूछे किसी को कि तुम्हारे इतने फॉलोअर्स, हाँ मैं क्या करूं, है अभी क्या करे अब मैं हूं ही ऐसा तो दादी का उत्तर क्या था कि ये लोग कौन है? लीडर्स है। और दादी को जो जो सेवाएं दी गई तुरंत हाजी। 54 में हमने देखा था दादी को कहा गया, कहाँ जाओ? जापान जाओ क्रेडी। और वो जापान से कहाँ 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 कितना, एक साल जब आए तो यज्ञ का स्थान बदल गया था, एक साल हो गया, गए थे 3 मास के लिए, 6 मास हो गया, 6 मास के 9 मास, 9 मास का 1 साल। जब पहुंचे वापस तो ब्रिज कोटी में आए, गए थे पहुंचे तो कोटा हाउस में पहुंचे, गए थे ब्रिज कोटी से पाठ। जब दादी जापान में थी, रमेश भाई ने बाबा से कहा कि यहाँ पर एक गीता पाठशाला की संस्था है, भगवत गीता की संस्था, और उसके जो चीफ है श्री पांडुरंग शास्त्री वो भी उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, और वो ब्रह्मचारी है। तो अगर दादी प्रकाशमणि और दादी रतनमोहिनी उनके भोजन की थोड़ी व्यवस्था कर दे वहाँ पर जापान में, क्योंकि वो भी भारत से जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत अच्छा होगा। तो दोपहर को ये लोग हर दिन जितने दिन उधर कॉन्फ्रेंस में थे, 4 कॉन्फ्रेंसेस थी, 3, एक तो हो चुकी थी कॉन्फ्रेंस 2, कॉन्फ्रेंस 3, कॉन्फ्रेंस 4, एक तो हो चुकी थी, वो जो हुई थी उसका ही जो भाई था जो ऋषिकेश पहुंचा था शिवानंद आश्रम में, उसने ही इन्वाइट किया था ब्रह्मा कुमारीज को। इसलिए दादिया जब पहुंची तब 3 लोग जब पहुंचे, आनंद किशोर दादा, प्रकाशमणि दादी और रतनमोहिनी दादी, कहाँ? 2nd कॉन्फ्रेंस में थे, 2nd वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, एंड 3rd एंड फिर 4th, ऐसी 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। और उसमें जो दादियों ने दिए हुए स्पीचेस है वो अभी अभी 2007-8 में रिट्रीव हुए हैं उस कॉन्फ्रेंस में। क्या क्या है? स्पीच बाय मिस प्रकाशमणि, स्पीच बाय मिस रतन मोहिनी, ऐसे स्पीचेस है उनके इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किए गए, वो जो उनका बुक है उसमें जो पब्लिश, अभी तक वो थोड़े छिपे हुए थे, अभी 2012 के आसपास वो बाहर आए हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो दादी को कहा गया कि दादी उसकी अगर सेवा कर दो तो बहुत अच्छा होगा, वो पांडुरंग शास्त्री की, श्री पांडुरंग शास्त्री भगवत गीता, रमेश जी के, रमेश भाई के गुरु थे तो ज्ञान में आने के पहले तो दादियों ने उसकी बहुत सेवा की, दोपहर में उसके लिए भोजन लंच वगैरह सब। और जब वो भोजन के लिए आते थे फिर उनको दादिया यज्ञ का इतिहास सुनाती थी, हिस्ट्री और फिर जब वो वापस आए वो इतना पॉजिटिव थे, क्योंकि विरोध तो भयंकर चालू ही था ना तब भी, थोड़ा 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 थोड़ा, हमेशा से चालू है इतना अभी तो कम हो गया इतना, पर पहले बहुत था। तो वो एक सेवा, रमेश भाई कहते हैं कि वो बहुत अच्छी सेवा हुई। अगला 1964 की बात है, मुंबई में फर्स्ट प्रदर्शनी होने वाली थी, फर्स्ट यज्ञ की प्रदर्शनी कहाँ लगी? मुंबई में। तो चित्र बनाने चालू थे तो रमेश भाई मुंबई से चित्र भेजते थे, तो एक चित्र था हु इज ट्रू वैष्णवा, सच्चा वैष्णव कौन, और बाबा वहां से करेक्शन करके वापस भेजते थे। तो रमेश भाई ने वो चित्र भेजा और वहां से करेक्शन होके स्क्रिप्ट आई, पर वहां जो हैंडराइटिंग थी वो दूसरी थी थोड़ी। तो बाबा, रमेश भाई ने बाबा से पूछा, बाबा ये आपकी हैंडराइटिंग तो नहीं है जिसने करेक्शन किया, ये किसने करेक्शन किया? तो बाबा ने कहा कि यहाँ कुमार का है, ये उसकी हैंडराइटिंग है, उसने करेक्शन किया है। तो रमेश भाई ने लिखा है कि अगर आप सोचते हो कि वो ही करेक्शन करना है तो उसको आप इधर क्यों नहीं भेज देते, मुझे बार बार वहां क्यों कम्युनिकेशन करना है? बाबा ने कहा वो इस समय पटना में, पर फिर बाबा ने दादी को यहाँ भेज दिया, और ईस्ट साइड कोई नहीं था इसलिए फिर ईस्ट में निर्मल शांता दादी को भेजा, जो फिर वहीं रह गई। और दादी कहाँ रह गई, 64 से 69 तक कहाँ रही, मुंबई में। वाटरलू मेंशन था पहले, फिर बाद में वो चेंज होके गाम देवी का जो फ्लैट था वहां पर दादी आ गई। तो दादी वहां आ गई तब से, और रमेश भाई ने कहा कि मेरा और दादी का संबंध, ये हम लोग बहुत समीप रहे 64। और फिर जब दादी विदेश गई 77 में फर्स्ट टाइम, जो कल हमने देखा, पहले कहाँ गई 77 में, पहले लंदन और फिर आगे। तो दादी का जो विजन था वो बहुत ग्रेट, बहुत डीप विजनरी थी। जब यूएन में पहुंची, अमेरिका में पहुंची, और जब दादी को, दादी ने पूछा ये बिल्डिंग कौन सी है रमेश भाई, रमेश भाई को कहा दादी को अब क्या समझाए, दादी ये यूएन की बिल्डिंग है, ये यूएन क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, दादी ने पूछा, इतने सारे झंडे लहरा रहे हैं वहां पर। रमेश भाई ने कहा दादी यहाँ पर अभी अमेरिका में कोई नाम निशान नहीं है सेंटर का, अभी तो कहाँ खुला है, केवल लंदन। दादी यहाँ विश्व भर की जो समस्या है उसका समाधान होता है। तो दादी ने क्या कहा था तब विजन, कि एक दिन शिव बाबा का झंडा यहाँ होना चाहिए, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ये विजन होता है, देख लेना कि ऐसा होगा, और वो हुआ भी। तो नेक्स्ट, दादी से पूछा था कभी कि दादी आप जो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि लॉ और लव का बैलेंस होना चाहिए, आप वो कैसे करते, लॉ और लव का बैलेंस होना चाहिए, हाउ डू यू डू दैट। दादी ने कहा था दादी के लिए लव ही लॉ है। कितना अच्छा उत्तर है, दादी के लिए लव ही लॉ है, लव और लॉ का बैलेंस रखने की विधि क्या है, लव को ही लॉ बना देना। पर वो लव कैसा हो, बहुत ऊंचा, सभी के लिए, कोई पक्षपात नहीं। और जब लॉ की बात आई तो लॉ भी होना चाहिए। एक बार दो भाइयों का झगड़ा हो गया था, कहां पर, मेडिटेशन हॉल में, मेडिटेशन के समय एक ने दूसरे को मार दिया तो दादी के पास समझ ये आई, तो दादी ने क्या किया, ऐसा नहीं कि जिसने मारा उसको तुरंत उसके खिलाफ निर्णय दे दिया, नहीं, पहले मीटिंग की, सबको, सारे जो सीनियर्स थे उनको बुलाया और सबकी राय ली कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। उसके बाद में जब सब ने ये माना, उसके बाद फिर जिसने मारा था उसको फिर शायद कुछ समय के लिए भेजा। तो दादी का एडमिनिस्ट्रेशन लॉफुल भी था और लवफुल भी था। कोई अगर किसी की बात लेके आता है, कोई छोटी बहन अपने इंचार्ज बहन की कंप्लेंट लेके आती थी, तो दादी उस इंचार्ज को सीधा कॉल नहीं करती थी कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था इसके साथ, ये स्ट्रेटेजी नहीं थी दादी की, दादी की स्ट्रेटेजी अलग थी, उसको ही समझाती थी प्यार से और टाइम देती थी, तुरंत कोई भी निर्णय नहीं लेती थी, कोई भी, वेट एंड वॉच, युक्त युक्त, धीरे से, योग लग, योग करो, योग बढ़ाओ, अप्रोच एकदम अलग थी दादी की। और ये सब जो दादी, किसी ने कहा है कि जैसे ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि हमने ब्रह्मा बाबा को कभी पुरुषार्थ करते देखा ही नहीं, किसी ने, हमने उनको सीधा स्वरूप में ही देखा, वैसा दादी के लिए भी कहा जाता है कि दादी को किसी ने पुरुषार्थ करते हुए देखा नहीं, कि अभी दादी योग लगा रही है और फिर ये कर रही है, फिर वो कर रही है, अभी मुझे अपने अंदर का क्रोध जीतना है, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं, वो जैसे रेडीमेड पीस नेक्स्ट टू ब्रह्मा। इसके लिए दादी के एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी सारी चीजें हुई। कल रात को भी सुना रहे थे, जब दादी वापस आई फॉरेन टूर से, रमेश भाई के साथ बैठी, 800 भाई को, रमेश भाई को टोली देनी थी और 1200 माता और बहनों को, दादी को, रमेश भाई के हाथ दुख गए, किसी ने देखा है, 100 को टोली देके देखो एक बार क्या होता है, 100 लोगों को, और उसमें भी माता ऐसा दूर दूर हाथ करती है, उसको ऐसे झुक झुक के देना पड़ता है, कोई कोई एक हाथ करती है, पूरा हाथ दुख जाता है 100 लोगों को टोली देने के बाद। और दादी ने कितने लोगों को दिया, 1200 लोगों को टोली, और रमेश भाई ने 800 लोगों को। रमेश भाई ने कहा अरे बाप रे गया हाथ। तो दादी को पूछा आपका हाथ नहीं दुखता है, दादी ने क्या कहा, मुझे प्रैक्टिस है, और ये हाथ किसका है, दाता, देवता बनने वाले, तो प्रैक्टिस किसकी चाहिए, देने की, तो प्रैक्टिस करके देखना। सही में दुख जाता है हाथ, परंतु यदि हायर कॉन्शियसनेस हो, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस हो कि ये सब कौन है, तो नहीं दुखेगा फिर, नहीं तो दुखता है। हमको याद है, हम एक बार टोली दे रहे थे किसी सेंटर पर, एकदम रेड लाइट और बहुत बड़ी सभा थी, 1000 की आसपास सभा होगी, और सब टोली लेने आ रहे थे, तो टोली दे रहे टोली दे रहे एकदम दृष्टि दे रहे, वो टोली ले रहे, एक माता ने टोली ली और सीधा एकदम आ गई कान के पास। हम एकदम से डर गए, क्या है, अभी योग चालू है, एकदम योग का गीत चालू है, उसमें एकदम कान के पास आ गई, कहने लगी कमर में दर्द है, कोई गोली बताओ। मैंने कहा बाद में। और कोई कोई डबल डबल आ जाते हैं। तो दादी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी हम बात कर रहे थे। निर्मला दीदी लिखती है कि मैं जब पहली बार न्यूजीलैंड गई, फर्स्ट टाइम, और तब वहाँ कोई घर नहीं था, अलग अलग घरों में रहना पड़ता था और कोई सेवा नहीं, तो मैंने दादी को खत लिखा था, प्रकाशमणि दादी को। दादी का उधर से पत्र आया कि तुम कौन हो, शेरनी हो, और शेरनी जो होती है, शेर जो होता है, अकेले ही चलता है, तुम्हें किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है, किसी के आधार लेने की जरूरत नहीं। आधार कौन लेते हैं, जो झुंड में चलने वाले कौन होते हैं, भेड़ बकरियाँ, तुम शेरनी हो। तो दादी कहती है बस वो लेटर आया और एकदम पावर आ गई, दीदी कहती है। तो और कल भी सो जो सुना रहे थे ज्ञान सरोवर के इनॉग्रेशन के समय, दादी ने क्या कह दिया था पूरी सभा को, जिससे सारे लोग एकदम शॉक हो गए कि दादी ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जब हम भी थे नीचे शांतिवन में, तो डॉक्टर्स आए हुए थे, मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें दादी प्रकाश मेरी लास्ट में आई थी। और अब तक तो ऐसी बातें चालू थी ज्ञान की, ऊपर ऊपर से ढीली 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 ढीली, जो स्पीकर्स बताते हैं ना, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो। लास्ट दिन था, सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे और दादी ने कहा प्यूरिटी के विषय में कि प्यूरिटी की प्रतिज्ञा कर करके जो जाएगा यहाँ से वो हाथ खड़ा करो। सारे डॉक्टर्स बैठे थे और दादी ने क्या कहा कॉन्फ्रेंस में, जो प्यूरिटी की प्रतिज्ञा करेगा अब भी दादी के सामने सभी हाथ खड़ा करेंगे, कर रहे थे सब लोग। निर्भय, वैसा ही जगदीश भाई जी के बारे में भी है कि एक सत्यानंद कोई सरस्वती कोई स्वामी आए थे, तो वो बैठे थे, तो बहने उनको ज्ञान तो नहीं सुना रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, दिल्ली में ये बता रही थी वो बता रही थी, और जगदीश भाई आए और जगदीश भाई आके सीधा ज्ञान चालू कर दिया, और उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वो सुनने में। निर्मला दीदी सुनाती है अपने अनुभव में कि वो जो स्वामी जी थे उसको सुन इंटरेस्ट नहीं था, वो फिर वो चले गए, परंतु देखा कि हम लोग तो इधर उधर की बातें कर रहे थे, जगदीश भाई उसको ज्ञान देना है बस, सीधा कम टू द पॉइंट, बीटिंग द बुश अराउंड, इधर उधर 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 की बातें नहीं, सीधा पॉइंट पे आओ, ये काम के लिए हम आए हैं, ये काम छोड़ के दूसरा काम नहीं करना है। यहाँ तक कि ये जो 5 लोग गए थे अमेरिका डेलीगेट, जगदीश भाई, निर्मला दीदी, रोजी बहन, शीलिंद्र दादी और रमेश भाई, पहले गए थे लंदन और वहाँ पर मुरली दादा और रजनी माता के घर पे रुके और वहाँ सेंटर खुल गया। उनका लक्ष्य था कि जहाँ हम जाए सेवा करके आए, और फिर वहाँ से कहाँ पहुँचे थे, अमेरिका, और अमेरिका में भी फिर उनको पता चला, उनको लगा कि हम लोग अलग अलग होके सेवा करें, पर जिस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे उस कॉन्फ्रेंस के लिए जगदीश भाई निर्मला दीदी यही लोग थे, बाकी प्रेजेंट वो रोजी बहन का कोई भाई जमैका में था तो वो वहाँ गई और उसको अकंपनी करने, हाँ तो वो वहाँ चली गई, पर जगदीश भाई जिस काम के लिए गए थे उसको छोड़ा नहीं और अकेले ही पूरा टूर करते रहे अमेरिका में अकेले। तो लीडर्स की क्वालिटीज है फोकस्ड रहते हैं, जो काम है वो फर्स्ट, बाकी सब चीजें बाद में। तो दादी का भी ऐसे ही था। उसके बाद में गुलजार दादी का एक अनुभव है कि दादी ने सबको पूछा बाबा जाने के बाद कौन बनेगा रथ, तो सबने मना कर दिया, संतरी दादी और शील दादी, गुलजार दादी को पूछा, और गुलजार दादी को क्या पूछा, तुम मेरी बात नहीं, तुम ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इतना अधिकार से कहा, यू विल नॉट डिनाई मी, कि गुलजार दादी ने कहा मुझे मानना ही पड़ा, और तब से बाबा का रथ गुलजार दादी। तो दादी में वो एक पावर थी सामने वाले से हाँ करवानी, एक रीति से देखे तो वो इतना प्यार कि वो हाँ बोलना ही है उसको सामने वाले को। चार्ली भाई अपना एक अनुभव सुनाता है कि जब मैं पहली बार मधुबन में आया 1975, तो दादी ने मुझे सिखाया बाबा के सामने जाके क्या बोलना है। दादी ने सिखाया हिंदी में बोलना है, बाबा को बोलो कि मैं बाबा आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बाबा के सामने बैठा और बाबा से कहा, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर आया, दादी को पूछा और क्या बोलूँ, क्योंकि हिस्ट्री हॉल में कम लोग थे 75 में, तो दादी ने सिखाया जाओ बाबा के सामने बोलो कि बाबा मैं कब कब से आपको ढूंढ रहा था, अब आपके आप मुझे आके मिले हो। वो गया, तो वो उसको हिंदी तो पता नहीं और क्या बोल रहा है ये भी नहीं पता, बस दादी जो सुना रही वो जाके बोल रहा है। फिर दादी ने कहा अब जाके बाबा के सामने बोलो मैं बंदर हूँ, उसको पता ही नहीं इसका अर्थ क्या होता है। तो वो गया और फिर बाबा के सामने बैठा और बाबा के सामने बोला बाबा मैं बंदर हूँ। बाबा भी हंस रहे, सब हंस रहे, उसको पता ही नहीं क्यों हंस रहे सब लोग। तो कहता है दादी, फिर मुझे बाद में पता चला कि दादी ने ये कहा है। चार्ली वैन का एक और अनुभव भाई का, जब दादी पहली बार अमेरिका ऑस्ट्रेलिया आई, सबसे पहले हमने कल देखा सेवा कहाँ चालू हुई, 74 में लंदन और 75 में ऑस्ट्रेलिया, 77 में उधर अमेरिका। तो वहाँ जब दादी आई तो एक यूनिवर्सिटी थी सिडनी में, वहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ और सब लोग थे प्रोग्राम में, दादी भी थी और सब लोग थे, और लेट ये लोग आए। आते ही सबसे पहले दादी ने कहा क्या काम किया, किचन में जाना और भोजन बनाना। दादी भी सुबह से खाया नहीं, खाना नहीं खाया है, बाकियों ने भी नहीं खाया है, पर थकी तो दादी भी है उनके साथ, वो भी उन्हीं के साथ है, पर सबसे पहला काम किया किचन में जाके भोजन बनाना और लेके आना इन सब के लिए। अब ये चार्ली और ये सब तो नए थे ना तब, तो उन सब ने एक ही चीज लिखी है कि हम सबको कौन सी भाषा आती थी, माँ की, दादी से। और जो कल भी सुनाया, जो छोटी कन्या थी 17 साल की, उसको दादी ने अपनी सीट दे दी ट्रेन में, उसका टिकट कंफर्म नहीं था, वो बैठी थी। दादी आधी रात को उठी, देखी ये कन्या बैठी हुई है बोरी पर, उसको सुला दिया और खुद बैठी रही। दादी को ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और एक चीज़, जैसे ब्रह्मा के वाणी में क्या आता है, बाबा बाबा, थर्ड पर्सन में बात करते, वैसे दादी कैसे बात करती है, आज दादी को संकल्प आया, मुझे संकल्प आया, मेरे को संकल्प आए, माए, ये सबसे बाहर है। और कोई अगर इसका एक्टिंग करने की कोशिश करे तो एकदम पकड़ में आएगा। कोई कोई भाई बहने हैं ऐसे, ओपीडी में आते हैं हमारे, कहते क्या तकलीफ है, तो उसका जो नाम होता है ना, वो कहते उसको वो तकलीफ है, वो कौन, तो ओपीडी कार्ड पे देखते वो अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं, एकदम आर्टिफिशियल डुप्लीकेट दिखता है वो। मतलब दादी की एक्टिंग करने की कोशिश करते कोई भी के, नेचुरल नहीं दिखता है। वो कहते क्या तकलीफ है, हाँ इस भाई को ना, वो कहते भाई को ना ये तकलीफ है, कौन सा भाई, कोई दूसरा है क्या, खुद ही है वो। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसकी क्वालिटीज जितनी होनी चाहिए वो सभी दादी में थी, और बहुत निर्माण चित, अहंकार नहीं किसी बात का। वो भोग संदेश था, एक बार गुलजार दादी भोग संदेश लेके आई, और भोग संदेश में बाबा ने गुलजार दादी को और प्रकाशमणि दादी को इमर्ज किया। भोग संदेश कौन ला रहा है, गुलजार दादी, और उस संदेश में इन दोनों को इमर्ज किया, और बाबा ने कहा दादी को कि दादी आपने कितनी सेवाएं की, इतना विस्तार किया, क्योंकि दादी के एडमिनिस्ट्रेशन में ये सेमिनार, मेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम्स, मेले, क्या कुछ नहीं हुआ। पिक्चर्स में दादी को बहुत इंटरेस्ट था, दादी जब दिल्ली जाती थी कृष्णानगर, वहाँ पर वो आत्म प्रकाश भाई थे और चित्रशाला थी, दादी एक एक चित्र को देखती थी वहाँ पर, चित्रों में बहुत इंटरेस्ट। दादी को गीतों में बहुत इंटरेस्ट था कि बाबा के नए गीत कुछ आए क्या, नए नए गीत चाहिए 18 जनवरी के लिए। तो वो संदेश आया और बाबा ने कहा दादी को कि दादी आपने कितनी सेवाएं की, कितना यज्ञ का विस्तार किया, कितना यज्ञ को फैलाया। दादी का एक ही उत्तर था, कौन सा, क्या उत्तर था, दादी मैं, बाबा मैं नहीं, बाबा। मैं नहीं, आप। इतना ही वो भोग संदेश, छोटा सा भोग संदेश है एक, कि मैं नहीं, यू। मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया। तो दादी का प्रशासन बहुत लंबा काल तक चला और इसमें बहुत सारी, और तब दादी जब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, दादी की उम्र कितनी थी, 48। ये बहुत छोटी उम्र है जो इतनी बड़ी संस्था का कोई हेड बन जाए, और जहां ऑलरेडी इनसे बड़े बड़े लोग हैं, सीनियर्स ऑलरेडी हैं कुछ कुछ, और उम्र में तो बहुत सारे सीनियर्स है वो तो अलग बात है, बट 48 एक बहुत कम एज है लीडरशिप की। बट विद इन वन ईयर सब ने स्वीकार कर लिया उनको कि यही लीडर है। एक और लास्ट बात रथ के बारे में, तो फर्स्ट रथ ब्रह्मा और उसके बाद में गुलजार दादी, उसके बाद में नए नए निकल रहे हैं स्प्लिंटर ग्रुप्स। एक है विष्णु पार्टी दशरथ पटेल जी, एक है शंकर पार्टी वीरेंद्र दीक्षित जिसकी हमने कल चर्चा की थी, एक है सतीश पार्टी, सतीश ग्रुप पार्टी, सतीश मेहता, एक है एडवांस, एक है इन एडवांस सुपर एडवांस पार्टी। इतने सारे ग्रुप्स हैं क्योंकि ये जो ग्रुप बने उनके अंदर कुछ लोग बाहर निकले, वहां से दुखी होके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ऐसे करते करते ढेर सारे ग्रुप बनते गए बनते गए बनते गए, और न जाने कितने हैं ऐसे। और वर्तमान में भी हमें एक मैसेज आया था 3-4 साल पहले कि एक भाई है उसके तन में बाबा आ रहे, और वो जो बहनें थे उन्होंने मैसेज लिखा था, बहुत लंबा मैसेज था कि ये बाबा ही है, हमने तो आपको बता दिया आपको आना है तो आओ, हम तो जा रही महाराष्ट्र में। और अभी जो वर्तमान में है इसमें 10 प्रॉब्लम्स है, 10 प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, शिव और ब्रह्मा, ब्रह्मा जाने के बाद ब्रह्मा अकेला कभी आया है, कभी नहीं। तो अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ जो बाबा आ रहा है उसमें बाबा अलग, ब्रह्मा अलग से आता है, बाप दादा अलग से आता है, शिव बाबा अलग से और ब्रह्मा अलग, ब्रह्मा की मुरली अलग, शिव की मुरली अलग। ये सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा, ब्रह्मा बाबा कभी झुकझुक के चलते थे, झुकझुक के चलते। तीसरा प्रॉब्लम नंबर 3, ये हमारा एनालिसिस है, मनमत ऑब्जर्वेशन, मनमत जो भी है, मनमत हम बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं हो पता नहीं, बट ये अभी का ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशंस, कि बाबा कभी झुकझुक के नहीं चलते थे, बाबा तो लास्ट तक स्ट्रेट थे, पर लेटेस्ट बाबा झुकझुक के। तीसरा प्रॉब्लम, बाबा ने अपने लिए कभी भी अपुन अपुन शब्द प्रयोग नहीं किया, अपुन को ऐसा लगता है, अपुन को वैसा लगता है। बाबा क्या कहते थे, बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे करते हैं। तो ये जो अपुन अपुन जो है ये बॉम्बे की भाषा है। प्रॉब्लम नंबर 4, बाबा यहाँ का मधुबन को छोड़ के बाबा दूसरी जगह क्यों आए, उसका एक कारण उन्होंने बताया, एक कारण कि बाबा जब यहाँ आते थे तो बाबा को कहा जाता था बाबा याद प्यार, मतलब बाबा से कह रहे बाबा आप जाओ, पर बाबा से ये कब कहा जाता था, जब बाबा आए मुरली चली, भोग संदेश भोग लगाया बाबा को, उसके बाद में दृष्टि हुई, उसके बाबा ने मैसेज दिया, झंडा वंदन अगर कुछ जो भी है सब कुछ करने के बाद लास्ट में बाबा कहते थे आगे क्या करना है या अब क्या करना है, तब बाबा से कहते थे बाबा अब याद प्यार। इनका कहना है कि जहां बाप की ऐसी बेइज्जती होती है वहां बाप आएगा वापस, मतलब बाबा गुस्सा हो गए, एंग्री, इसलिए बाबा ने मधुबन को छोड़ दिया और इधर चालू हुआ। कब तक बाप इतनी बेइज्जती, मतलब बाबा को तुम ये कहते हो कि बाबा आप जाओ, टाइम हो गया, अरे बाबा सब कुछ हो गया है, भोग हो गया, मुरली हो गई, मिलना हो गया, संदेश हो गया, सब कुछ हो गया है, दृष्टि देना हो गया, बाद में बाबा पूछते हैं अब क्या करना है, तो बाबा अभी ये करना है। प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5, वो बाबा कहता है कि यहाँ जितने भोग संदेश है सब गलत है, मैंने दिए ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 6, ओम की ध्वनि चलती थी यज्ञ के शुरुआत में, और 19 हमने ये देखा 50s में वो ओम की ध्वनि सुनाना बंद कर दिया, क्योंकि पहले जो बहुत सारी बातें चलती थी वो पार्ट बाबा ने बंद कर दी और ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना चालू हो गया। तो क्या भगवान जिसने पहले ओम की ध्वनि कराई और उसको फिर खुद बंद करवा दिया, वो कई सालों के बाद आके फिर से ओम की ध्वनि चालू कर दे, वो नई प्रथा चालू कर दे ओम की ध्वनि की? प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 7, ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र, ये फिर से चालू करेगा वो? साक्षी होकर शांत चित्त से सोचना है, क्या ऐसा हो सकता है? प्रॉब्लम नंबर 8, ऑलरेडी उसकी स्थापन किया हुआ ये यज्ञ है, उसका स्थापन किया हुआ इतना बड़ा यज्ञ है, उसका एक नाम है, वो आकर एक नई संस्था और नए नाम के साथ चालू करता है, प्लेस चलो ठीक, बट नया नाम, नया संस्था और नया नाम। प्रॉब्लम नंबर 9, वो अपना नया कारोबार चालू करता है और जो उसके अनन्य रतन है यहाँ के, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनको कोई खबर नहीं, उनको बिना बताए, उनके लिए कटाक्ष, कहीं कुछ नहीं, सीधा। प्रॉब्लम नंबर 10, गुलजार दादी को सबने देखा है, व्यक्तिगत रूप से जाना है, जो रूहानियत, जो पर्सनालिटी, जो एक योगी, और जब बाबा उनके तन में आते थे वो जो दादी का जो रूहानियत, एक रॉयल्टी, वो जो चेहरे में जो चमक, जो आकर्षण, जो वो अवर्णन, उसका क्या वर्णन करे, वो जो हलचल है शरीर की, वो कितनी कम, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, कभी बाप दादा को बस थोड़ा सा दादी को गले लग लिया बस, बाकी बाप दादा के हाथ पैर कितने कम हिलते हैं, एक रूहानियत है, एक आकर्षण, एक मौन है, वो दृष्टि कितना देर तक, कभी 10-10 मिनट तक चलती है, वो रूहानियत इज मिसिंग। तो ये मन मत, ऐसे 10 प्रॉब्लम्स और हो गए, वो दूसरे, ये लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन, और तो बहुत होगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके तन में जो, जिसको कहते हैं स्प्लिंटर ग्रुप, सब ये जो आए, हेमंत जी और बहुत सारे, सत्य योगा इंस्टीट्यूट, इंस्पिरेशन पार्टी, कितने सारे शिव कृष्णा पार्टी, ये जो नया है कृष्णा पार्टी, वो कहता है संगम युग का कृष्ण मैं हूँ। विदेश में भी कुछ कुछ है बाबा के नए नए इधर उधर रथ, इधर ही नहीं है, डिम बी के डिम, तो रसाहार का दिन नंबर 2 रसाहार डे 2 तो 21 दिन का रसाहार है आज का, दूसरा दिन लगे रहना है, छोड़ना नहीं, सुमनों पर चलते आए अब कांटों पर चलना है। ओम शांति।
अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे, हिमालय दृढ़ता का नित पाठ पढ़ाता, बहे निरंतर ध्येय सिंधु तक सरिता का जल कण बतलाता। अपने दृढ़ निश्चय से पथ की बाधाओं को डर रहना सीखें, अब कांटों पर चलना सीखें। अब तक सुमनों पर चलते थे, अपनी रक्षा आप करे जो देता उसका साथ विधाता। अन्यों पर अवलंबित है जो पग पग पर वह ठोकर खाता। जीवन का सिद्धांत अमर है, उस पर हम नित चलना सीखें। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे। चपला सी चंचलता हम में घों का गर्जन है। हम में पूर्ण चंद्रमा चुंबी सिंधु तरंगों का नर्तन है। सागर से गंभीर बने हम, पवन समान मचलना सीखें। अब कांटों पर चलना सीखें, अब तक सुमनों पर चलते थे।